नमस्कार, मैं रविश कुमार। पेगासस जासूसी कांड की जांच में एक नया मोड़ आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच का ऐलान किया, लेकिन इससे एक कदम आगे जाते हुए बंगाल की सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। दिल्ली आने से पहले ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया। इस न्यायिक आयोग के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर होंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य भी इस आयोग के सदस्य बनाए गए हैं।
M.B. Lokur, retired judge, Honorable Supreme Court of India, and Honorable Justice Jyotirmoy Bhattacharya, retired Chief Justice, Honorable High Court at Calcutta, in exercise of power conferred by Section 3 of the Commission of Enquiry Act 1952, in the matter of widely reported illegal hacking, monitoring, putting under surveillance, tracking, recording, etc. of mobile phones of various persons in the state of West Bengal.
सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने 24 अगस्त 2017 को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताकर एक विस्तृत फैसला दिया। क्या वही सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले का संज्ञान नहीं लेगा? CPM ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में SIT से कराए। देश की दो दो राज्य सरकारें जांच की बात कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार जांच से इनकार कर रही है। बंगाल ने तो न्यायिक आयोग ही बना दिया है। इस पूरे मामले में एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, यह जासूसी सॉफ्टवेयर बेहद खतरनाक है। इसे आप सिर्फ फोन की रिकॉर्डिंग ना समझें, जैसा पहले के समय में विपक्षी नेताओं का हुआ करता था। यह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता है, बल्कि आपको सोते जागते देख रहा होता है। आप फोन बंद करेंगे तब भी यह फोन का माइक और कैमरा ऑन कर रिकॉर्डिंग करने लगेगा। आप किसी जगह पर मौजूद हैं जिसके बारे में नहीं चाहते कि कोई जाने। आपने फोन और GPS दोनों बंद किया हुआ है, तब भी पेगासस थोड़े समय के लिए GPS चालू कर देगा और जान लेगा कि आप इस वक्त कहां और किसके साथ हैं। इसका इस्तेमाल किसी की भी हत्या में हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खशोगी और मेक्सिको के पत्रकार सेसिलियो पिनेदा बेर्तो की हत्या के मामले में पेगासस के इस्तेमाल को लेकर इसी तरह के सवाल उठे हैं। ये सॉफ्टवेयर हर वो जानकारी जो आपने फोन से भेजी है उसका पूरा इतिहास निकाल सकता है। पेगासस से जुड़ी खबरें हर दिन पहले से ज्यादा गंभीर लगने लगी हैं। आखिर कौन है जो विपक्ष के नेताओं के अलावा पत्रकारों, सेना के अधिकारियों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों के अधिकारियों के नंबर की जासूसी कराना चाहता होगा? सरकार क्यों कहती है कि वो जांच नहीं करेगी? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट को फोन किया है कि इस मामले की जांच गंभीरता से हो। पेगासस प्रोजेक्ट के पर्दाफाश में यह बात सामने आई है कि मोरक्को के सुरक्षा बलों ने फ्रांस के राष्ट्रपति और उनकी सरकार के 15 लोगों के खिलाफ पेगासस जासूसी स्पायरवेयर का इस्तेमाल किया है। यही नहीं, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवार्डो फिलिप और उनके 14 मंत्रियों की भी जासूसी की जा रही थी। इस पर्दाफाश के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फ्रांस में आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद मैक्रों ने अपना फोन भी बदल लिया है। मोरक्को की सरकार और NSO ने इससे इनकार किया है। मोरक्को की सरकार ने एबेनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज पर मुकदमा भी दायर किया है, लेकिन तब भी फ्रांस में जांच हो रही है, इसराइल में जांच हो रही है। क्या जांच से इनकार करने वाली भारत सरकार को NSO पर इसराइल और फ्रांस से भी ज्यादा भरोसा है? आज द वायर ने पेगासस फोन जासूसी कांड पर 4 रिपोर्ट प्रकाशित की है। ये सभी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट से और भी खतरनाक है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय के जूनियर अधिकारी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक रहे IAS अधिकारी वीरेंद्र जैन का भी फोन नंबर मिला है, जिनकी जासूसी की जानी थी। आखिर इन सभी के नंबर इसराइल की कंपनी के सूची में क्यों मौजूद हैं? क्या अब भी ये स्वतंत्र और पारदर्शी जांच के विषय नहीं है? क्या जांच से इनकार की ये वजह है कि जासूसी के निशान घर के भीतर तक भी पहुंच रहे हैं? द वायर में संगीता बरुआ पिशारोती और कबीर अग्रवाल की रिपोर्ट बताती है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने वाले सेवारत 2 कर्नल और एक सेवानिवृत्त हो चुके खुफिया विभाग के अधिकारी के फोन के नंबर भी पेगासस प्रोजेक्ट के डेटा में मिले हैं। इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 2 सेवारत अफसरों के भी फोन नंबर पेगासस प्रोजेक्ट के डेटा में मिले हैं। पहला नाम और नंबर बीएसएफ के पूर्व प्रमुख के शर्मा का है। शर्मा जब अपने पद पर थे तब 11 फरवरी 2018 को कोलकाता में अपनी वर्दी में एक राजनीतिक कार्यक्रम में शरीक होते हैं, जिसके मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कृष्ण गोपाल, मुरलीधर और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के मोहित रॉय मौजूद थे। इस कार्यक्रम के 1 महीने बाद के शर्मा का फोन नंबर पेगासस की संभावित टारगेट की सूची में शामिल किया जाता है। शर्मा ने द वायर को प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि वे अपना फोन फोरेंसिक जांच के लिए नहीं देंगे। 2018 में रिटायर होने के बाद के शर्मा को लोकसभा चुनावों के दौरान बंगाल और झारखंड का विशेष पर्यवेक्षक बनाया जाता है। यह नियुक्ति चुनाव आयोग करता है। ममता बनर्जी ने इस नियुक्ति का विरोध किया था। ममता के विरोध के 2 दिन बाद के शर्मा को हटा दिया गया। आप जान चुके हैं कि उस समय चुनाव आयुक्त के पद पर मौजूद अशोक लवासा का फोन नंबर भी संभावितों की सूची में है। सेवा में रहते हुए बीएसएफ के प्रमुख का फोन नंबर जासूसी करने की सूची में मिलता है। इतना काफी है कि इस मामले की पारदर्शी जांच हो, ताकि पता चले कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी किसी और के हाथ तो नहीं लगी है। यही नहीं, बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जगदीश मैथानी का भी फोन नंबर संभावितों की सूची में मिला है। मैथानी ने भी वायर को प्रतिक्रिया नहीं दी है। 2018 में खुफिया विभाग रॉ के जितेंद्र कुमार ओझा को समय से पहले रिटायर करा दिया जाता है, जिसके खिलाफ ओझा ने केंद्रीय पंचायत कैट में चुनौती दी और अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जितेंद्र कुमार ओझा को सेवा काल में 6 बार अति उल्लेखनीय कार्य की तारीफ मिली है। उत्तम सेवा मेडल मिल चुका है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आतंक के कई मामलों को सुलझाया है। ओझा और उनकी पत्नी का नंबर पेगासस की संभावित सूची में पाया गया है। क्या अब भी सरकार जांच से इनकार करेगी? विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि आतंकवाद, माओवाद और लेफ्ट पर नजर रखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है सरकार नहीं बताएगी। अपने देश के काबिल अफसर बीएसएफ के चीफ इंस्पेक्टर जनरल पर भी क्या सरकार शक करती है कि ये लोग आतंकवाद में शामिल हो सकते हैं या इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसी और काम में हो रहा है? ब्लैकमेल भी एक कारण हो सकता है।
आप मुझे एक बात बताइए, मुझे जब टेररिस्ट और लेफ्टिस्ट से डील करना है, माओवादी से डील करना है, मैं कौन सी सॉफ्टवेयर पे क्या काम कर रही हूं मैं आपको बताऊंगी? मैं आतंकवादियों का साथ दूंगी? आप आतंकवादी के साथ हैं, आईएसआई के साथ हैं, किसके साथ हैं? ये पहले कांग्रेस क्लियर करे। मैंने कौन सी सॉफ्टवेयर यूज की है या मैं क्या चीजें इस्तेमाल करती हूँ वो मैं पब्लिक में बताऊंगी, वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी।
हिंदी अखबारों ने पेगासस जासूसी कांड को रद्दी में ठेल दिया है। हिंदी प्रदेश की करोड़ों जनता इसकी जानकारियों से वंचित है। आज कारगिल विजय दिवस है, सेना के शौर्य की तारीफ हो रही है, लेकिन सेना के अधिकारियों के फोन नंबर जासूसी किए जाने की सूची में मिलते हैं, इसे लेकर सरकार अपने मोर्चे पर डटी हुई है, यही कि जांच नहीं करेंगे। जितेंद्र कुमार ओझा ने द वायर को प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह साफ तौर पर एक आपराधिक हरकत है, खास तौर पर मेरी पत्नी के नंबर की निगरानी करना। मुझे शक है कि यह काम आपराधिक किस्म के अफसरों द्वारा करवाया जा रहा है, ताकि जिस दौरान मैं अपना केस लड़ रहा था उस दौरान मुझ पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। भारतीय सेना के कर्नल मुकुल देव का फोन कोई क्यों रिकॉर्ड करना चाहेगा? क्यों उनके फोन में मौजूद निजी बातचीत, निजी तस्वीरों को देखना चाहेगा? सेना के अफसर का नाम और नंबर अगर जासूसी की सूची में हो, क्या तब भी इस कांड की जांच नहीं होनी चाहिए? जब 2017 में सेना के अफसरों को मुफ्त राशन की सुविधा बंद कर दी गई, तब कर्नल मुकुल देव ने रक्षा सचिव को कानूनी नोटिस भेज दिया था। कर्नल मुकुल देव ने द वायर को प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस सरकार में जो भी सवाल करता है शक की नजर से देखा जाता है।
मेरा सरकार को ये चैलेंज करना कि उन्होंने पीस टाइम में ऑफिसर्स के राशन क्यों रोके थे, जो कि सरासर गलत था, जिसके लिए मैंने सरकार को एक लीगल नोटिस दिया था, और उस लीगल नोटिस देने के बाद में सरकार ने उस बात को सही ना मानते हुए उल्टा मेरा ही कैरियर स्पॉइल किया, और उसके बाद से ही सरकार ने मेरे ऊपर स्नूपिंग शुरू की होगी। इससे पहले मैं NFU के लिए भी लड़ाई कर रहा था, नॉन फंक्शनल अपग्रेड हमारा अधिकार है जो कि बाकी सारे क्लास वन डस्टेड ऑफिसर्स को दिया गया, बट सरकार ने इसको आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स को नहीं दिया और हमें इससे वंचित रखा। इसके लिए भी मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया था जो मैं जीत गया था, और अब सरकार उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपील में है। पिछले चार साल से वो अपील डिसाइड नहीं हुई है। ऐसा ही कुछ जो सरकार ने ओआरओपी दी उसमें जो भी कुछ संगतियाँ हैं उसको उनको क्लियर नहीं किया गया, और जो 2019 में उसका रिवीजन होना था ओरिजिनल मैंडेट के हिसाब से, इवन सरकार ने वो नहीं किया। मैं इन सब बातों के लिए और फौज के लगातार होते हुए डिग्रेडेशन के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा, और शायद इसी वजह से सरकार ने ये मेरे खिलाफ एक्शन लिया कि उन्होंने मेरा नाम इस लिस्ट में डाला होगा। ये बहुत ही गलत बात है कि किसी भी एक पीस लविंग सिटीजन के लिए, और वो भी एक आर्मी ऑफिसर का नंबर, आप सर्वेलेंस में डाल दें इस प्रकार। हालांकि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मैंने कोई गलत कार्य किया है और ना ही सरकार को इससे कुछ मिला होगा।
सरकार का यह तर्क जमता नहीं है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। हालांकि अभी तक सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर ना हां कहा है ना इनकार किया है, लेकिन इतने लोगों के नाम और फोन नंबर संभावित लोगों की सूची में आने के बाद भी सरकार जांच की बात नहीं कर रही है। द वायर की सुकन्या शांता और अजय आशीर्वाद महाप्रशस्त की रिपोर्ट के अनुसार कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहे प्रत्यर्पण निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी राजेश्वर सिंह, उनकी पत्नी और दो बहनों के फोन नंबर भी संभावितों की सूची में मिले हैं। राजेश्वर सिंह सहारा इंडिया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के मामलों की जांच कर रहे थे। द वायर ने लिखा है कि इन सभी की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। फॉरबिडन स्टोरी ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय से जवाब मांगा तो यही मिला कि किसी भी व्यक्ति का फोन नंबर सर्वेलांस के लिए नहीं चुना गया है। लेकिन राजेश्वर सिंह की बहन आभा सिंह ने अपने फोन को फोरेंसिक जांच के लिए दे दिया। चूंकि उनका फोन एंड्रॉयड था इसलिए कुछ ठोस जानकारी नहीं मिली। आभा सिंह आईएएस रह चुकी हैं और इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत करती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के एक पत्रकार का भी नंबर है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार यह पत्रकार कश्मीर के हैं। समाचार एजेंसी के सीईओ विजय जोशी ने कहा है कि अगर यह सच है तो इसकी निंदा करते हैं, यह किसी की निजता का उल्लंघन है, संविधान ने जो आजादी दी है उसका भी हनन है। विजय जोशी ने सरकार से कहा है कि पारदर्शिता बरते और पुष्टि करे कि उनके स्टाफ के फोन नंबर की जासूसी की गई है या नहीं। सरकार तो जांच से ही इनकार कर रही है। विपक्ष के सांसद संसद में पेगासस के मुद्दे से पीछे नहीं हट रहे हैं, हर दिन इसे लेकर संसद के भीतर और बाहर आवाज उठा रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद पेगासस स्पाईवेयर का बैनर लेकर सदन के बीच में चले गए, प्रधानमंत्री से जवाब मांगने लगे और नारे लगाने लगे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी चर्चा कराने की मांग की है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने भी पेगासस प्रोजेक्ट पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में भी कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया कि सारा काम रोककर पेगासस प्रोजेक्ट पर चर्चा हो। मनीष तिवारी के अलावा कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने भी नोटिस दिया है।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन दिया, देश की जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा कर करके भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और इतने बहुमत से उन्हें लोकसभा में सांसद जिताए। आज सरकार की उनकी है, जब पूरे देश की जनता का भरोसा है तो आखिरकार जनता की जासूसी क्यों कर रहे हैं आप? जो अधिकारी हैं उनकी जासूसी हो रही है, उनकी पार्टी के अपने नेता हैं उनकी जासूसी हो रही है, तो आखिरकार जासूसी क्यों चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये अपराध है।
अगर आप बाहर के एजेंसीज को लाकर उसको यहाँ पर बिठाकर सबकी जासूसी करने लगा रहे हैं तो देश में कैसे, देश का रक्षण कैसा होगा? क्योंकि ये जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, दिस विल गो टू अदर कंट्रीज आल्सो, इजीली दे विल टेक दिस इंफॉर्मेशन, और हमारी जो स्ट्रेटजी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उसको भी धोखा है। तो उसी लिए हम ये मुद्दे वहां रख के डिस्कशन करना चाहते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है। दो साल पहले कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिराकर येदुरप्पा मुख्यमंत्री बने थे। इस खेल में भी पेगासस के जासूसी सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की खबर आई है। कई नेताओं के फोन नंबर संभावितों की सूची में मिले हैं। वायर की रिपोर्ट पढ़िए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के राकेश तिवारी का नंबर भी संभावितों की सूची में है, जो बीसीसीआई में जय शाह के करीबी बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। कहीं ऐसा ना हो कि हर अपने पराये का नंबर जासूसी की सूची में हो और जासूसी हो भी चुकी हो। संसद के बाहर राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे नजर आ रहे हैं। राहुल ने कहा कि वे ट्रैक्टर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बताना चाहते हैं कि सरकार को नए कृषि कानून वापस लेने होंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो, #FarmersProtest। दिल्ली में सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन कर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, युवा कांग्रेस प्रमुख श्रीनिवास बीवी और कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने यह तस्वीर ट्वीट की है और अपने घर के बाहर का एक वीडियो भी। अलका लांबा ने लिखा है कि तानाशाह के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मुझे मेरे ही घर में बंदी बना रखा है। पुलिस का कहना है कि मैं जंतर मंतर महिला किसान संसद में हिस्सा लेने, किसानों की मांगों को अपना समर्थन देने नहीं जा सकती। क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इस तस्वीर में अलका लांबा के घर के भीतर दिल्ली पुलिस के जवान बैठे नजर आते हैं।
हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ।
देखो, इस तरह के फोटो आप बहुत देखे हैं लोगों ने, इनका कभी किसी देश ने भट्टा परसौल का पूरा नाटकी ड्रामा देखा है। अब कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को हाईजेक करके अगर सोचती है कि उसको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है तो नहीं होगा। किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। हमारी सहयोगी सुकीर्ति आज वहां मौजूद थी।
अपने काले कानून रद्द करा के जाएंगे। मोदी साहब, नहीं चाहिए तुम्हारी कोठी बंगले। जहां तक मेरी आवाज सुनती हो, आपके पुलिस वाले हैं हमारा भगवान है।
40 साल की रमेश आंतिल की इस बुलंद आवाज को देखकर यह यकीन करना मुश्किल है कि 5 महीने पहले ही उन्होंने अपने पति सतीश कुमार को इसी किसान आंदोलन के दौरान खोया है। रमेश आंतिल उन 200 महिला किसानों में से एक हैं जो सोमवार को जंतर मंतर पर हुई किसान संसद में शामिल हुई। ये किसान संसद दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के समय पर ही आयोजित की जा रही है। हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली रमेश आंतिल 10वीं पास हैं। वो और उनके पति 1 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। बीते नवंबर में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से दोनों पति पत्नी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते रहे। फरवरी में आंदोलन के दौरान ही उनके पति का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लेकिन इससे रमेश के जोश में कोई कमी नहीं आई। उनके 13 से 22 साल के बीच के 4 बच्चे हैं जो परिवार में बाकी सदस्यों के साथ रहते हैं, जबकि वो खुद किसान आंदोलन में सक्रिय रहती हैं।
जिसके साथ भगवान होता है उसका सब कुछ परमात्मा होता है। हम परमात्मा से करते हैं विनती। मोदी के पास तो मोदी मीडिया है, हमारे पास हमारा भगवान है। और मैं श्रीमती रमेश आंतिल, चाहे मेरे पति शहीद हुए हैं, मेरे 4 बच्चे भी शहीद हो जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपने काले कानून रद्द करा के जाएंगे। जहां मोदी ने 7 महिलाओं को मंत्री बनाया था, आज वे 7ों महिला जो बीजेपी की मंत्री बनाई गई थी, आज आके इधर देखो, मेरी बहनों को देखो, मेरे भाइयों को देखो, कितना बढ़िया हमारा संसद चला हुआ है। क्या ये महिला रोटी बनाने का काम करती है? ये महिला रोटी भी बनाती है और घर को चलाती हैं और किसानों के साथ खेती भी करने का काम करती हैं, संसद चलाना भी जानती हैं।
इनकी निंदा करते हुए हम लोग सब अपना शीश झुकाएंगे, अपने शहीदों, हमारे शहीद भाई बहन और पिता समान लोगों की याद में।
रमेश आंतिल के पति सतीश कुमार समेत बीते 8 महीने में किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले सभी किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए महिला किसानों ने किसान संसद के दौरान 2 मिनट का मौन रखा।
हमारे शहीद अमर रहे,
अमर रहे, अमर रहे।
सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है।
इस किसान संसद में सीपीएम की नेता सुभाषनी अली ने स्पीकर की भूमिका निभाई। इस खास संसद के दौरान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आई महिलाओं ने मंच पर अपने अपने विचार रखे, लेकिन इस दौरान एक खास नन्हे वक्ता ने सबका ध्यान खींचा। इकतीस साल की मंजीत कौर महिला किसान संसद में अपने 4 साल के बेटे कप्तान सिंह को लेकर पहुंची। पंजाब के महल कला से वो दूसरी बार इन प्रदर्शनों में शामिल होने दिल्ली आईं। गांव में उनके पास 2 एकड़ जमीन है। वो कहती हैं कि उनकी लड़ाई अगली पीढ़ी के लिए है और तमाम मुश्किलों के बावजूद वो अपने बेटे को किसान बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
मुझे लगता है जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं, जो हमारा था वो तो हमारी एज तो चली गई है, जो आगे आ रहा है इनका है जो सब है, तो इन्हें लाइव पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। हमारे गांव में जो धरना लगता है वहां पर ये रेगुलर जाता है 8 मंथ से, तो तब वहां पर जो बोलते हैं ये फॉलो करता है उनको, तो जो भी वहां पर न्यू कोई भी पर्सन बोलता है देन ये मुझे कहता है कि मुझे भी आप सिखाओ, तो हमने इसे सिखाया तो ये नॉर्मली फॉलो कर लेता है, जो चीज़ हम बताते हैं तो सीख लेता है जल्दी से। मेरे अंदर से फीलिंग है कि हम किसान हैं तो मेरा बच्चा किसान ही रहे।
भारत में गांवों की 85% महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 13% के पास ही कृषि भूमि है। मौजूदा किसान आंदोलन में 15-20% प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं। इसके बावजूद किसानों के नेतृत्व में उनके लिए जगह नहीं है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी के 9 सदस्यों में से कोई भी महिला नहीं है, ना ही महिला प्रतिनिधियों को किसान और सरकार के बीच होने वाली वार्ता में अब तक शामिल किया गया है।
हमारे देश की ये नाराजगी है कि ज्यादातर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है घर की रसोई को संभालना, और जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जैसे अमेंडमेंट जैसे कानून ये सरकार पास करती है, तो हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ही ज्यादा जगह छोड़ दूं सरसों के तेल के रेट कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। और
29 साल की नवकिरण नट पेशे से डेंटिस्ट हैं, दिल्ली की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से फिल्म स्टडीज में भी एमए कर चुकी हैं। अपने माता पिता के साथ पिछले 8 महीने से वो सिंघू बॉर्डर पर हैं। उनके परिवार के पास पंजाब के मनसा जिले में 7 एकड़ जमीन है। काफी युवा उम्र से ही वो किसान संगठनों के साथ सक्रिय रही हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के अखबार ट्रॉली टाइम्स की सह संपादक हैं। उनका मानना है कि महिलाएं अब भी शोषण का शिकार हैं और किसान आंदोलन में भी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है।
आज जिस मुद्दे पे हम खास तौर पे डिस्कशन कर रहे हैं, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, उसको अगर देखें तो वो ना सिर्फ किसान विरोधी है, वो देश के हर नागरिक के विरोध में है, चाहे वो कोई युवा हो, चाहे वो कोई गरीब मजदूर हो या कोई मध्यवर्गीय इंसान हो, और खास करके महिलाएं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मतलब वो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश में रसोई की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं के ऊपर है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और ऊपर से मतलब आलू प्याज जैसे जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको निकाल दिया गया है लिस्ट से, एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से, तो उसके बाद जो पूरी आंच इसकी गिरनी है वो सबसे पहले महिलाओं पे गिरनी है। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही, जब घरेलू मतलब सेटअप में कुछ भी कट लगता है ना ऐसे स्थिति में, इकोनॉमिक्स क्राइसिस की स्थिति में, तो वो सबसे पहले महिलाओं पे लगता है, लड़कियों के खाने पे लगता है, लड़कियों की पढ़ाई पे लगता है, क्योंकि अगर घर में कोई एक ही बच्चे को पढ़ाना अफोर्ड कर पाता है तो वो मेल चाइल्ड को पढ़ाता है।
इस किसान संसद का अपना एक कृषि मंत्री भी है।
मैं काले लेख लिखने वालों में से नहीं हूँ। आपकी जो पीपल्स संसद हो रही है उसमें मैं आप लोगों की कृषि मंत्री हूँ, और मैं महसूस करती हूँ कि जो भी यहाँ तीखे सवाल किए गए हैं वो सही है।
67 साल की सुरिंदर जयपाल पंजाबी साहित्य में PhD हैं और लुधियाना से रिटायर हुई प्रोफेसर हैं। किसानों के परिवार से हैं और सिंघू बॉर्डर पर लगातार आ रही हैं। उनका मानना है कि देश के कृषि मंत्री बहुत ही जिद्दी हैं।
किसानों की बात वो अच्छी तरह से नहीं सुनते और वो सुनना नहीं चाहते। कई बार ना मेडिकल में ऐसा होता है, मेडिकल लाइन में, कि जो लोग सुनना नहीं चाहते उनके कान जो है ना वो सुनते हैं, उनमें कोई नुक्स नहीं है, वो सुन सकते हैं, पर जो सुनना नहीं चाहता उसको सचमुच कोई आवाज़ नहीं सुनती, और जो लोग बोलना नहीं चाहते उनके होते हुए भी वो बोल नहीं पाते, तो ये सुन नहीं पाता, ये सुनना नहीं चाहता। इतनी बड़ी लोगों की आवाज़ ना सुनना हमारे संविधान का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं।
किसान संसद में अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता गुल पनाग जैसे जाने माने चेहरे भी मौजूद रहे जो किसानों को समर्थन देने में पीछे नहीं हैं।
कि बहुत लोग हमारे मीडिया में यहाँ जो दोस्त बैठे हैं वो पूछते हैं कि सरकार मान तो गई है, अमेंडमेंट तो करने को तैयार है, मेरा सिर्फ एक सबमिशन है वो ये कि जो कानून प्रॉपर कार्रवाई से पास ही नहीं किए गए उनके किसी भी अमेंडमेंट में हमें कोई रुचि नहीं है। अगर कानून सही तरीके से पास नहीं किए गए उन्हें रद्द करना पड़ेगा, उन्हें रद्द करना पड़ेगा, उन्हें रद्द करना पड़ेगा।
महिलाएं हमेशा से इस किसान आंदोलन का हिस्सा रही हैं, पर ये पहली बार हुआ है कि वो इस तरह से सबसे आगे उभर कर आई हैं और आज उन्होंने अपनी खुद की संसद को संचालित किया। पर अब भी सरकार के साथ जो बातचीत है वो उलझी हुई है और बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या इस देश की असली संसद इनकी पुकार को सुनेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
मिजोरम और असम के मुख्यमंत्री आज मिजोरम असम सीमा पर तनाव को लेकर ट्विटर पर आ गए और एक दूसरे से उलझ गए। यही नहीं, गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग कर उनसे मामले को सुलझाने का आग्रह करने लगे। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया कि श्री अमित शाह जी इन मामलों को देखिए और तुरंत रोकिए। मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार भाजपा के साथ गठबंधन में है। पिछले कुछ महीनों से असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद गहरा हो गया था। इस विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह ने दो दिन पहले अपने पूर्वोत्तर के दौरे के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों से बातचीत भी की थी। मिजोरम के मुख्यमंत्री के ट्वीट के कुछ देर बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मिजोरम की साइड के पुलिस अधीक्षक हम लोगों से कह रहे हैं कि जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे तब तक उनके लोग ना तो सुनेंगे ना हिंसा रोकेंगे। ऐसे हालात में हम सरकार कैसे चला सकते हैं? जवाब में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा को टैग कर दिया कि अमित शाह जी के साथ हुई सौहार्दपूर्ण बैठक के बाद यह हैरानी की बात है कि असम पुलिस की दो टुकड़ियों और नागरिकों ने मिजोरम की सीमा के भीतर घुसकर वहां के निवासियों पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने ट्वीट में अमित शाह और पीएमओ को टैग किया। दो मुख्यमंत्री जब ट्विटर पर आकर आपस में झगड़ने लग जाएं, आप ब्रेक ले लीजिए। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा मंजूर हो गया है। इस्तीफा देने के बाद भी उन्हें काम से आराम नहीं मिला है। येदियुरप्पा ने कहा है कि वे अगले चुनाव में पार्टी की जीत के लिए काम करते रहेंगे।
मुख्यमंत्री इस्तीफे से ठीक पहले की तस्वीर, अपनी उपलब्धियों का जायजा लेते येदियुरप्पा, काल चक्र की तरह घूमती तस्वीर। तकरीबन 40 मिनट के अपने भाषण के दौरान येदियुरप्पा की आंखें दो बार नम हुई। साफ है कि येदियुरप्पा भले ही 78 साल के हों, लेकिन वो मार्गदर्शक मंडल में बैठने को तैयार नहीं है। संभव है कि बीजेपी आलाकमान येदियुरप्पा की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दे, लेकिन सवाल है येदियुरप्पा की जगह कौन। माना जा रहा है कि किसी लिंगायत को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। येदियुरप्पा के तीन जिन भरोसेमंद लिंगायत नेताओं के नाम चर्चा में हैं, वो हैं गृह मंत्री बसवराज बोम्मई, खनन मंत्री मुरगेश निरानी, सांसद शिव कुमार उदासी जिनके पिता सीएम उदासी येदियुरप्पा के करीबी थे। इसके अलावा फ्रांस से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करने वाले लिंगायत विधायक अरविंद बेल्लद, हालांकि चर्चा में सांसद प्रहलाद जोशी भी हैं, वो ब्राह्मण हैं, बीएल संतोष की ही तरह, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं। जाते जाते येदुरप्पा ने अपना दर्द बयां किया कि जब कभी भी वो मुख्यमंत्री बने उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। पहली बार उनकी नाराजगी अनंत कुमार से थी तो इस बार बीएल संतोष से। वैसे इस बार उनके बेटे और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष विजेंद्र की दखलअंदाजी ने उनके खिलाफ असंतोष बढ़ाया।
मुख्यमंत्री पद से येदुरप्पा ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। पार्टी आलाकमान के लिए ये एक राहत की बात है, लेकिन पार्टी आलाकमान की चुनौतियां नए सिरे से फिर शुरू हो गई हैं कि आखिर येदुरप्पा की जगह कौन लेगा, उनका विकल्प कौन होगा, कोई लिंगायत नेता या फिर कोई और। पार्टी आलाकमान को यह फैसला जल्द ही करना होगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।
आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।